Hari, 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 Hari.
आप सबका स्वागत है। है कि नहीं? कौन कौन नए हैं आज? Newcomers today, जो कल नहीं थे। अच्छा, फरीदाबाद से। ओके, रशिया से, मॉस्को। यस, मॉस्को इन द बैक आल्सो। आज क्या त्रयोदशी होगी? हाँ, पूर्णिमा कल है कि परसों? हमारी गौर पूर्णिमा तो परसों है। हाँ, परसों ही है। कल कोई हॉलीडे है ऐसा कुछ कह रहे थे, कल होली ऐसा। इज इट टुडे, टुमारो, डे आफ्टर? कल कुछ नहीं है। हाँ, आपको बोलने आता है? Day after tomorrow, okay. Translation? कोई करेगी माता जी हिंदी से अंग्रेजी में? ये तो रशियन है लेकिन कम से कम अंग्रेजी में। हाँ, यू कैन डू। एंड फॉर यू ट्रांसलेशन समान आत्मनिवेदन और ये भी कर सकता है। हाँ, दामोदर सखा। ओके, सुंदर लाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। एवरीबॉडी नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन अलका शोभे कपोलन में। अलका, अलका है भगवान के बाल। कपोल एंड मैं उनके भाल पर ऑन द चिक्स शोभायमान। ये संन्यास लेने के पहले का अरिब दृश्य होना चाहिए, तो फिर बाल नहीं रहे। भगवान के बाल भी बाल नहीं है जैसे हमारे बाल है। हमारा बाल तो कचरा होता है, माफ कीजिए आपके बालों के चरणों में अपराध कर रहे हैं हम, बालों को कचरा कह के। लेकिन भगवान सच्चिदानंद, उनके बाल भी सच्चिदानंद, इसीलिए भगवान के बालों का वर्णन या गौरव यहाँ संसार में हम लोग बालों की खूब चर्चा होती रहती है। हमारे बालों का सब खूब गुणगान भी होता रहता है। सुंदर लाला सची दुलाला नाचत सी हरि कीर्तन में, दरसी वाले सीरे चूड़ा दरसी वाले, वन फूल माला ही अपर डोले, पहिरन पीत पीतांबर शोभे, पहिरन पहने हैं भगवान, वस्त्र पहने हैं पीतांबर, कृष्ण है इसीलिए कृष्ण चैतन्य में भेद नहीं है, तो वस्त्र भी वैसे ही है। पहिरन पीत पीतांबर शोभे, पहिरन नूपुर रुणु झुनु चरणों में, नूपुर रुणु झुनु चरणों में, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, सुंदर लाला सजी दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, है राधा कृष्ण ना कोई गावत है, कोई गावत है हरि गुण गा, मंगल तान मृदंग रसाला तान मृदंग रसाला, बाजत है कोई रंगण में, कोई रंगण में,
गात है हरि गुण गान। हाले चंदन तिलक मनोहर भाले चंदन तिलक मनोहर हलका शोभ कपोलन में हलका शोभ कपोलन में सुंदर सुंदर हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
गाइए सब गाएंगे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे
हरे हरे हरे
राम हरे राम
राम राम
राम हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Gauranita Sri Sri Gauranita.
Gauranita,
Gauranita. Gauranita Sri Sri Gauranita.
Gauranita, Gauranita.
Gauranita Sri Sri Gauranita. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
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 Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda
Jaya
Gaur Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda
Jaya
Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Nityananda
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda
Jaya
Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda
Gaur Bhakta Vrinda Gaur Bhakta Vrinda Gauranitai Gira Sri Sri Radha Govinda Deva Ki Jai Jagannath Baladev Subhadrata Ki Jai Harinama Sankirtan Ki Jai Gaur Katha Mahotsav Ki Jai Gaur Purnima Mahotsav Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo Hari 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 Bo Hari Hari
गौर कथा अधिकतर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन ही किए हैं, तो गौर कथा मतलब भगवान के कीर्तन की कथा या भगवान के कीर्तन का कीर्तन गान। ये कीर्तन कीर्तन एक लीला कीर्तन, वैसे कीर्तन के भी कई प्रकार। कीर्तनीय सदा हरि ही हम लोग, कीर्तनीय सदा हरि, तो हरे कृष्ण ये भी कीर्तन है, तो कीर्तन का फिर और कीर्तन या कीर्तन की और कुछ वर्णन गाथा कथा कीर्तन की कथा या फिर भगवान के रूप की कथा, तो वो भी कीर्तन हुआ। रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, ऐसे धाम कीर्तन, ये सारे कीर्तन ही कीर्तन के प्रकार या कीर्तन के विषय। परिक्रमा में गए तो एक दिन कथा ही हुई, कीर्तन नहीं हुआ, तो भक्तों ने कहा महाराज महाराज कीर्तन नहीं हुआ कीर्तन। तो राधा रमन महाराज फिर कहे कीर्तन ही तो हुआ। कौन सा कीर्तन हुआ? लीला कीर्तन हुआ या भगवान के लीला का वर्णन हुआ, तो ये कीर्तन ही तो है। कीर्तन तो ग्लोरिफिकेशन, कीर्तयंतो माम, सततम कीर्तयंतो माम, भगवान गीता में कहते हैं। मेरा भक्त क्या करता है? सतत सदैव कीर्तन करता है। सततम कीर्तयंतो माम। तो हाँ, कल हम पढ़ रहे थे कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनका प्राकट्य तो कीर्तन के लिए हुआ, अवतार कीर्तन निमित्त गौरचंद्र अवतार, चैतन्य भागवत का कथन है। कीर्तन निमित्त तो प्रातःकाल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपना कीर्तन नगर संकीर्तन प्रारंभ किया करते थे। उसका भी वर्णन है, उदील अरुण पूरब भाग्य, उसके गीत लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किए कर रहे हैं तो उसका गीत बन गया, उदील अरुण पूरब भाग्य द्विजय मणि गौर अमनि जागे, भक्त समूह लैया साथे गेलो नगर राजे। तो प्रातः काल में जब सूर्य का उदय हो रहा है तो उदिलो अरुण पूर्व दिशा में, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्त समूह भक्तों का समूह साथ में लेके निकलते हैं। द्विजमणि गौरा अमनी जागे, द्विजमणि ब्राह्मणों में शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु इस समय ब्राह्मण के पुत्र बने हैं। जगन्नाथ मिश्र उनके पिता है, नंद बाबा तो वैश्य थे, वसुदेव क्षत्रिय थे, जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण थे। द्विज तो द्विजमणि, द्विजों में श्रेष्ठ, थथाई थथाई बाजे लखोल घन घन ताहे झांझे रे रोल, ऐसा आगे वर्णन थथाई थथाई मृदंग बज रहा है अभी सुन रहे थे, ऐसे कोई बढ़िया बजाएगा मृदंग तो आवाज कैसा करता है थथाई थथाई धिक धिक धिगेतान भी मृदंग कथयति मृदंग मृदंग बोलता है, मृदंग क्या कहता है धिक धिक दिस हैज टू बी स्टॉप्ड आल्सो दिस लेकिन तो हुआ मतलब धिक्कार हो धिक्कार हम लोग मराठी में कहते धिक्कार किनका धिक्कार कीर्तन यह हो रहा है गौर कथा यह हो रही है और आप लोग वहां क्या कर रहे हो आप घर में क्यों बैठे हो। कथयति मृदंग मृदंग कह रहा है आई कंडेम दे आर कंडेम्ड जो यह कीर्तन में नहीं है कथा में नहीं है उनका क्या धिक्कार धिक धिक धिगेतान एतान उनका धिक्कार। मृदंग कथयति मृदंग मृदंग बोल रहा है तो बोलों के साथ जो भी धिक धिक धिगेतान तो थथाई थथाई बाजे लखोल बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के समय मृदंग को क्या कहते खोल। और ये भी समझ है कि यह भगवान श्री कृष्ण के लीला में जो भूमिका मुरली बजाती है वही भूमिका गौरंग महाप्रभु के लीला में मृदंग की भूमिका वही है जो मुरली की भूमिका कृष्ण के लीला में। तो थथाई थथाई बाजे लखोल घन घन ताहे झांझे रे झांझ बज रहा है मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बले न बोलो रे वदन भरी। तो कुछ तो कीर्तन कर रहे अधिकतर कीर्तन कर रहे कुछ भक्त मंडली फिर प्रचार भी कर रही है जो गृहस्थ या लोग आए हैं बाहर कीर्तन को देखने सुनने के लिए अपने अपने घरों से तो उनको प्रचार कर रहे हैं और कह रहे कि कहो क्या कहो मुकुंद माधव यादव हरि बले न बोलो रे बोलो बोलो कैसे बोलो बले न बलपूर्वक थोड़ी ताकत लगाओ अपने शक्ति का उपयोग करो जोर से बोलो जैसे हम लोग बीच बीच में कहना पड़ता है लाउडली प्लीज लाउडर सिंग लाउडर प्रेम से कहो जोर से कहो तो बले न बोलो रे और कैसे वदन भरी मुख भर के बोलो दिल भर के फिर गला भर के और फिर मुख भर के बोलो और मुख खोलो कैसा मुख खोलो जैसे गुलाब जामुन खाने के समय कितना मुख खोलते हैं पूरा का पूरा आप ताकि कुछ बाहर नहीं गिरे। तो बले न बोलो रे वदो न भरी और फिर श्री कृष्ण चैत प्रेमे ढल ढल सोनार अंग चरणे नुपुर बाजे। तो ये सब हो रहा है हम सब भक्त एकत्रित हुए हैं मृदंग बज रहा है और वाद्य बज रहे हैं और उन सभी के मध्य में या कीर्तन मंडली से बिल्कुल आगे है महाप्रभु और वे क्या कर रहे प्रेमे ढोलो ढोलो सोनार अंग अंग डोल रहे हैं कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं नटराज चैतन्य महाप्रभु नटराज नटों में राजा किंग अमंग्स द एक्टर्स। तो एक्टर वैसे जैसे चाल चलता है वैसे एक्टर तो चलता नहीं, एक्टर तो नाचते ही रहता है, ही इज ऑलवेज डांसिंग. तो चैतन्य महाप्रभु नटराज, गौर नटराज, सदैव नाचते हैं चैतन्य महाप्रभु. बड़ा सुंदर उनका नृत्य. वो छवि मन में बसी हो तो वो छवि चैतन्य महाप्रभु की वैसे भी सुंदर, और व्यक्ति जब नृत्य करता है तो उसका सौंदर्य और भी खुलता है, और भी प्रकाशित होता है. वैसे भी सुंदर व्यक्ति और फिर नाचने लगता है तो फिर हमारी आंखें वही जहाँ जाओ हिलता डुलता नाचता. तो चैतन्य महाप्रभु प्रेमे ढलो ढलो सोनार अंग चरणे नुपुर बाजे. तो चरणों में नुपुर बांध के चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते, रुंझुन रुंझुन नुपुरों की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि और अन्य वाद्यों की ध्वनि, और साथ में चैतन्य महाप्रभु के चरणों के पायल की उसकी झनकार, उसकी ध्वनि, उस कीर्तन को और भी मीठा मधुर बनाती. अचैत हरि हरि हरि. चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कीर्तन करते हुए मध्य द्वीप में जा रहे थे, मध्य द्वीप गोद्रुम द्वीप में, जो नवद्वीप का द्वितीय द्वीप है गोद्रुम द्वीप, जो द्वीप वैसे कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है. नवद्वीप है, एक एक द्वीप एक एक भक्ति के लिए प्रसिद्ध है. द्वीप भी नव है और भक्ति के प्रकार भी कितने हैं, नव, नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति या नवद्वीप. तो सीमंत द्वीप प्रथम द्वीप है उस सूची में. तो वहां श्रवण, सीमंत द्वीप में श्रवण, तो गोद्रुम द्वीप में कीर्तन, और अगले द्वीप में मध्य द्वीप में स्मरण, फिर अगला जो कोल द्वीप है वह पाद सेवनम, फिर आगे का द्वीप है ऋतु द्वीप वह अर्चनम, और आगे का द्वीप है जाह्नो द्वीप वह पाद सेवन अमंचन वंदनम, जहाँ जाह्नो मुनि वंदना करते, संध्या वंदना जाह्नो मुनि की. और आगे का द्वीप है मोददद्रुम द्वीप, जहाँ सखा सख्य भा पाद सेवनम दास्यम से दास्य वह हनुमान राम के दास बनते हैं, ऐसे लीला भी है. श्री राम भी आए मोददद्रुम द्वीप में, आए नवद्वीप का जो मोद मतलब आह्लाद आनंद देने वाला मोददद्रुम, द्रुम मतलब या लता या वृक्ष या वन, तो मोददद्रुम द्वीप. तो यह दास्य भक्ति, और रुद्र द्वीप में दास्य के बाद कौन सा सखा सख्य, और फिर अंत में अंतिम और नवा द्वीप है अंतरद्वीप, जहाँ आत्मनिवेदनम. तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, प्रहलाद महाराज ने कहा वैसे, बेटा तुम क्या सीखे हो, क्या सीखे हो, तुम्हारे गुरु जी ने क्या सिखाया? तो प्रहलाद महाराज ने कहा था, ये सब सिखाया मुझे, श्रवणम कीर्तनम, ये नवविधा भक्ति सिखाए, बदमाश कहीं का, ये सिखाने के लिए थोड़े भेजा तुमको, कहां है तुम्हारा टीचर? ए तो शंड और अमर को बुलाए और खूब डांटे फटकारे और हुआ। ये तो पहले इसी के आए थे प्रहलाद महाराज, माँ के गर्भ में सीखे थे उन्होंने, और किसी ने सिखाया नहीं था। जो टीचर सिखाते थे उनके समझ में नहीं आता था, वो तो पहले ही वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट, पहले तो सीखे हुए थे, उनका और कोई सीखने की आवश्यकता नहीं थी। तो हुआ ये नवविधा भक्ति, इन नव द्वीपों में एक द्वीप में एक भक्ति। तो गोद्रम द्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन के साथ नृत्य भी, और केवल चैतन्य महाप्रभु ही नृत्य नहीं करते, उनके साथ वैसे चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है और आप भी उस कीर्तन में हो और आप नहीं नाचोगे नहीं नृत्य करोगे, ऐसा तो संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति ही आपको नचाएगी, और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में जो भक्त आते तो चैतन्य महाप्रभु के हाथ की वो कठपुतली बनते, और फिर चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और वे सभी को नृत्य करवाते हैं। तो ऐसा कीर्तन और नृत्य करते 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 भक्त थोड़े थके थे, तो एक एक गार्डन में उन्होंने प्रवेश किया और वहां एक अद्भुत घटना। भक्त सोच रहे इज एनीथिंग, कुछ या कुछ खाने को अगर मिल सकता है, कुछ कुछ पीने को मिल सकता है, ऐसा सोच ही रहे थे भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक आम का बीज वहां बोया, भक्त वहां खड़े बैठे थे खड़े थे, तो उनके सामने कुछ ही क्षणों में वो बीज अंकुरित हुआ और पौधा हुआ और फिर वृक्ष भी बना और फूल भी खिले और फलों से लद भी गया। वो ये सारा हम अभी जो कहे इतने समय में बीज बोए बोए अंकुर हो गया, टहनिया हो गया, फूल आ गए, फल आ गए, इतना हमने जो कहा आधे मिनट में, इतने में ये सब बीजारोपण से फल फ्रूट्स आर रेडी, ये सब हुआ। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से वो फल आम के फल तोड़ तोड़ के एक एक फल दे रहे थे। शायद भक्तों ने सोचा बस मैं इतना भूखा हूं, एक आम के फल से क्या होगा, लेकिन वे फल ऐसे थे उसमें न तो छिलका था बाहर न तो अंदर की गुठली थी, बस सारा रस बड़ा कंडेंस्ड, तुमका पेट भर के फिर बच गया। अब इसको क्या करे, एक आम भी नहीं खा पाए, इतना मीठा और बड़ा बड़े बड़े पक्के रस भरे आम प्रभु ने खिलाए उस दिन। और फिर वैसे हर रोज जब वहां से जाते कीर्तन करते हुए उदीलो अरुणा पूरब भागे द्विजमानी गोरा अमानी जागे, तो उस गार्डन में जरूर जाते और फिर महाप्रसादे गोविंदे होता और पुनः फीस्ट मैंगो फीस्ट। हर रोज फॉर 365 डेज भक्तों ने वहां फल खाए और फिर एक साल के बाद वो वृक्ष अंतर्धान हुआ।
हरे कृष्ण।
ये कैसे हुआ, किसने किया, ये कुछ ये अलग से कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं है। कौन है करने वाले? सर्व कारण कारणम जो भगवान है वही सब। तो उसी द्वीप में, गोद्रुम द्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन और किसी दिन की बात है। चैतन्य महाप्रभु ने, कौन है वैसे, जगदानंद नाम के एक भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु के। वे थे सत्यभामा, द्वारका की सत्यभामा, कृष्णलीला में द्वारका की सत्यभामा चैतन्य महाप्रभु के समय जगदानंद पंडित बन गई। तो जगदानंद पंडित ने प्रेम विवर्थ नामक अपने ही ग्रंथ में इस लीला का वर्णन किया। उस दिन का कीर्तन जो हुआ तो वो लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु कहे, आज हम लोग ये जो सरोवर है या तालाब है इसके तट पर हम लोग कीर्तन करते हुए जाएंगे। तो कीर्तन का वर्णन वो लिखते हैं कैसे, गोविंद नाम के एक भक्त और वासुघोष की एक वासुघोष नाम के बड़े गायक थे चैतन्य महाप्रभु के समय। तो ये दो भक्त गा रहे थे उस कीर्तन में और नृत्य तो गौरांग महाप्रभु कर रहे थे ही और साथ ही साथ और दो भक्तों का नाम वे अपने डायरी में लिखे, जगदानंद जो कीर्तन मंडली था, वक्रेश्वर पंडित कीर्तन कर रहे थे और गदाधर पंडित, ये दो पंडित वक्रेश्वर पंडित वैसे उनके बराबरी का कोई और डांसर नहीं था। कभी कभी वे तीन दिन और तीन रात सतत कीर्तन करते, 72 आवर्स नॉन स्टॉप। तो वे दोनों कीर्तन कर रहे थे, कुछ भक्त गायन और लीडिंग कीर्तन। और ऐसा कीर्तन जम जम गया उस दिन, वो लिखे जगदानंद पंडित। कहते मैं स्वयं जगदानंद पंडित, मुझे तो न तो सुर या ताल का ज्ञान था लेकिन उस दिन मैं भी गाने लगा और मैं भी नृत्य करने लगा। मैंने अनुभव किया कि मानो चैतन्य महाप्रभु मुझ में प्रवेश किए और मुझे नचा रहे हैं और गाने को प्रेरणा दे रहे हैं। और जब कीर्तन हो रहा था तो हुआ तो उस वहां ग्वालों की बस्ती हुआ करती थी, गोपपल्ली। गोपपल्ली वहां एक नरसिंह पल्ली भी है, देवपल्ली भी है उसी द्वीप में, गोद्रुन द्वीप में, लेकिन ये थोड़ा हट के और दूरी पर गोपपल्ली जा गोप उन गलियों में वहां गोप रहा करते थे। तो जब कीर्तन जो दूर दूर तक उसकी ध्वनि फैल रही थी, मानो सारा संसार ब्रह्मांड उसी ध्वनि से भर रहा था, तो उस क्षेत्र की उस गोपल्ली की स्त्रियां बाहर आके उसका अभिनंदन, उसका स्वागत कर रहे उस कीर्तन का। और बंगाल में या कीर्तन के समय या मध्य में या कोई विष्णु या शंख ध्वनि जब होती है तो उल्लू ध्वनि करते, उल्लू ध्वनि। ओके, हमारे बीच में एक करके सुनाओ थोड़ा। एक तो इतना आवाज एक का है तो कितनी सारी माताएं बाहर आके जब उस कीर्तन का अभिनंदन अनुमोदन कर रही थी तो जगदानंद लिखते, एक तो कीर्तन का आवाज और दूसरा ये उल्लू ध्वनि का आवाज सर्वत्र। ये कीर्तन आगे बढ़ रहा था तो उन वहां के ग्वालों में से एक भीम नाम के ग्वाले थे, वे आए और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहे, आप कृपया हमारे घर आइए और आप अकेले नहीं, आप सबको ले आइए, हम आप मेरी माँ आप सबको प्रसाद खिलाना चाहती है। और मेरी माँ जो श्यामा ग्वालिनी उसका नाम, विवाह के पहले जहाँ वो जन्मी तो योगपीठ आपका जहाँ जन्म स्थान है चैतन्य महाप्रभु का, तो वहाँ से पास ही मेरी माँ की भी मायके वहाँ जन्मी थी, तब वो वहाँ जाया करती थी आपके घर पर और आपके मैया को सची माता को वो मेरी माँ भी सची माता को अपनी माँ समझती थी और खूब सेवा भी किया करती थी। तो आप कृपया आइए। और मेरी माँ ने श्यामा ग्वाली ने कितने सारे व्यंजन बनाए हैं, मिष्टान्न बनाए हैं, कृपया आइए। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनकी कीर्तन मंडली उनके घर पर कई और ऐसा भोजन उन्होंने, और ऐसे यहां चैतन्य महाप्रभु के जो कीर्तन करने वाले जो पार्षद भी है, वृंदावन के वो ग्वाल बाल ही थे, वृंदावन के ग्वाल बाल, तो जैसे नंद भवन में भोजन करते या और कई वृंदावन में भोजन करते, तो यह ये जो गोपपल्ली जो क्षेत्र है उस गोद्रुम द्वीप में, ये नंदग्राम ही है नवद्वीप का, वृंदावन का नंदग्राम नवद्वीप में आपको मिलेगा, जहाँ ये गोपपल्ली है, जहाँ ये गोद्रुन द्वीप है, इस प्रकार नॉन डिफरेंट। तो यहाँ भी कावर्ड बॉयज, कावर्ड सॉरी फैमिलीज, गायों की रखवाली करने वाले। तो भोजन हुआ तो पुनः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने के उद्देश्य बाहर आ रहे थे, तो एक दूसरे ग्वाले चैतन्य महाप्रभु से मिले, उनका नाम रामदास था। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को विशेष निवेदन किया, प्रभु प्रभु प्लीज आपको कुछ करना होगा, क्या कर सकता हूं कहो, क्या समस्या है? तो इस रामदास ग्वाले ने कहा, ओ देखिए आगे जो तालाब है, हमारी गाय वहां जाके जलपान तो करना चाहती, जल पीना चाहती है, लेकिन पी नहीं सकती, क्या समस्या है? उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता है, सभी क्रोकोडाइल। तो गाय दूर से ही हम्मा करती रहती है, वो बड़ी प्यासी रहती है, लेकिन पास में नहीं जा सकती उस घड़ियाल या मगरमच्छ के भय से। तो आप कुछ कीजिए प्रभु। ओके, तो प्रभु एवर रेडी रहते ही है। तो उस तालाब की ओर चैतन्य महाप्रभु जाने लगे, उनके पीछे पीछे भक्त भी जा रहे हैं। इतने में सभी ने दृश्य देखा कि वो जो घड़ियाल था वो पानी से निकल के इस कीर्तन मंडली की ओर, चैतन्य महाप्रभु की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी भक्तों को लगा भी कोई समस्या हो सकती है, बचाओ बचाओ, या कोई पीटो, डंडा लाओ, फिर राठी लाओ, किल दिस। तो वैसे इस घड़ियाल का मन में और कुछ विचार था, वो आगे आया और चैतन्य महाप्रभु के चरणों को उसने स्पर्श किया, केवल नतमस्तक होके उसने स्पर्श किया, और उस स्पर्श के साथ वो मगरमच्छ मगरमच्छ नहीं रहा, वहां पर एक देव कुमार वहां प्रकट हुआ। और चैतन्य महाप्रभु की खूब उसने स्तुति की, प्रार्थना की, खूब आभार माने। अभी उद्धार हुआ उस घड़ियाल का, और ये मगरमच्छ घड़ियाल अपने पूर्व जन्म का थोड़ा इतिहास समझाने लगा, ताकि एक समय मैं वृंदावन के काम वन में था और दिन का समय वह दुर्वासा मुनि जी लेटे थे, मैं पीछे से गया और मेरे अपने नटखट स्वभाव के लिए मैं थोड़ा प्रसिद्ध था, और मैंने देखा कि दुर्वासा मुनि की इतनी लंबी चोटी पीछे लेटी, वो भी लेटे थे और चोटी भी लेटी। तो मुझे आइडिया आ गई, तो मैंने कैंची लाई और क्या किया, उसको काट दिया मैंने। तो मुनि जी उठ गए, वो तो उठ के खड़े हो गए, लेकिन उनकी सारी सीखा वगैरह तो जमीन पर पड़ी है, चेक करते हो, इट्स नॉट गॉन, सॉरी। तो ये कर तू तो इस बालक की होगी, तो ऐ मैं तुमको शाप देता हूं, तुम घड़ियाल बन जाओ, तो मगरमच्छ बन जाओ। तो मैं तो डर गया और क्षमा याचना तो खूब मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तो शाप दे दिया, इट्स टू लेट, अभी तो मगरमच्छ बनना ही होगा, लेकिन तुम कुछ थोड़ा पश्चाताप कर रहे हो, कुछ क्षमा मांग रहे हो, तो एक बात हो सकती है, मगरमच्छ बनोगे तुमको केवल चार युगों तक प्रतीक्षा करनी होगी। ये सत्ययुग की घटना, जब ये चोटी काटी इस बालक ने, देव कुमार देवता का पुत्र, तो कलयुग में, और तुम घड़ियाल भी कहा के बन जाओगे, नवद्वीप के एक तालाब के तुम घड़ियाल बन जाओ, और गौरांग महाप्रभु भगवान जब कलयुग के प्रथम संध्या में प्रकट होंगे तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये मगरमच्छ चार युगों तक प्रतीक्षा कर रहा था, और उस दिन उस कीर्तन के मध्य में गोपपल्ली के पास, जो दह या दलेक था, तो वहां पर उद्धार किए। तो इस प्रकार का अपना पूर्व जन्म का इतिहास सुना के ये गोप कुमार ने चैतन्य महाप्रभु की प्रदक्षिणा की और अपने स्वर्गलोक लौटा। फिर आगे हो सकता है भगवान के धाम भी लौटा होगा, लेकिन पहले वो देव कुमार देवलोक के लिए प्रस्थान किया। तो जो तालाब है उस तालाब का नाम गौर दह कहते हैं, नवद्वीप में गौर दह, जैसे वृंदावन में कालिया दह है, तो ये गौर दह। तो कालिया ने जो हालत कालिया दह की हुई थी, अपने जहर से सारा वो जल ही जहरीला बना था, और वहाँ कोई गाय कभी गलती से भी जल पान करती तो मर जाती, फिर प्रभु को आके उनको जीवित करना पड़ता, वहाँ से कोई पंछी भी उड़ान करते तो वे भी मर के गिर जाते। ऐसी स्थिति जैसे कालिया दह की, और उस या उसके कारण वहाँ के फिर गाय है या ग्वाल बाल है या पशु पक्षी, तो वैसे वैसा ही हाल इस दह के जल का, इस मगरमच्छ के कारण। तो वृंदावन में कालिया दमन किए, कालिया को भगाए वहां से, चले जाओ यहां से। तो फिर वो कालिया चला गया, वृंदावन से चला गया, और वो कालिया अब फीजी में रहता है। फीजी एक आइलैंड है, तो वहां जो समुद्र है वह कभी कभी दिखाई पड़ता है। इस बात का श्रील प्रभुपाद को जब पता चला तो श्रील प्रभुपाद ने फीजी में स्वयं मंदिर बनाए, कालिया कृष्णा, हम उसको जाके देखे हैं, आप भी जाके देख सकते हो। कालिया भी है और नागपत्नियां भी है, और कृष्णा कालिया के फन के ऊपर नृत्य करते हुए कृष्णा। तो उस क्षेत्र में कालिया रहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि यह कालिया कृष्ण का मंदिर होना चाहिए। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते, वैसे मध्याह्न के समय वे मध्य द्वीप में पहुंच जाते हैं, ऐसे वहां एक दूसरे द्वीप में गंगा को पार करने के उपरांत ऋतु द्वीप आता है, ऋतु द्वीप में राधा कुंड भी है, तो वहां भी पहुंच जाते हैं चैतन्य महाप्रभु मध्याह्न के समय। जैसे वृंदावन में कृष्ण को मिलना है, आप मिलना चाहते हो मध्याह्न के समय, तो कहां मिलोगे, कहां जाना होगा आपको, राधा कुंड में मिलेंगे आपको भगवान। तो नवद्वीप में भी राधा कुंड है, तो वृंदावन में तो रास क्रीड़ा खेलते हैं गोपियों के साथ, तो नवद्वीप में जो राधा कुंड है वहां चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजन्ति हि सुमेधसः कीर्तन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो मध्य द्वीप में आए मध्याह्न के समय, ये राधा कुंड का स्थान नहीं है, दूसरा द्वीप है मध्य द्वीप। तो वहां मध्याह्न के समय सप्त ऋषियों को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया। सप्त ऋषि जानते हैं आप, आकाश में सात तारे हैं, तो सप्त ऋषि। तो ब्रह्मा, ये ब्रह्मा के पुत्र है सप्त ऋषि, और ब्रह्मा ने उनको भेजा, जाओ नवद्वीप जाओ। वे पूछ रहे हमारा कैसे उद्धार होगा, हमको क्या करना चाहिए, क्या विधि है। तो वह ब्रह्मा उनको नवद्वीप भेजे, और नवद्वीप में वहाँ सात अलग अलग टीले हैं, अभी तो उनका दर्शन उनका प्राकट्य नहीं है, लेकिन उस द्वीप में मध्य द्वीप में आज भी वो सप्त ऋषि निवास करते हैं। तो वे जब आए तो उन्होंने वहां खूब कीर्तन किया, गौरा 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 गौरांग महाप्रभु के नामों का खूब उच्चारण किए। और ये तपस्या भी प्रभु के नामों का उच्चारण ही बड़ी तपस्या है। वांगमय ये वाणी की तपस्या है, ये मन की तपस्या है, शरीर की तपस्या है, एक ही साथ ये तीनों प्रकार की तपस्या होती है जब हम कीर्तन करते हैं। तो ये सप्त ऋषि वहां कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन करने का गौरांग के नामों का उच्चारण का फल वो शुद्ध हुए, उनकी चेतना पवित्र हुई, और उसका फल क्या, एक दिन गौरांग महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो, अजानुलंबित भुजो, लंबी भुजा वाले गौरांग महाप्रभु, कमलायताक्षो उनके विशाल नेत्र, कर्ण पर्यंतम कान तक उनकी आंखें पहुंच जाते, और बड़ा भाल और उभरा हुई नासिका, गले में माला और पीतांबर वस्त्र, सुंदर लाला सचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। वो कीर्तन करते हुए, अभी तो हम लोग गा लिए है इसका, तो वह कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु जा रहे ना, और नृत्य कर रहे हैं, भाले चंदन तिलक मनोहर, और अपने भाल पर भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। तो चैतन्य महाप्रभु के नवद्वीप में जो कीर्तन हुए, नवद्वीप में, तो उस कीर्तन में तो ये अलका शोभे कपोलन में का वर्णन आएगा। और 24 साल रहे वहां नवद्वीप में, और फिर संन्यास लिए तो फिर नवदीप को छोड़े, तो उसके नवदीप के बाद वाले जो कीर्तन हुए उस कीर्तन में फिर अलका शोभे कपोलन में का वर्णन नहीं आएगा। तो ये अलका शोभे कपोलन में चल रहा है, मतलब ये नवदीप का कीर्तन है। तो उन सप्त ऋषियों ने चैतन्य महाप्रभु के गौरांग सर्वांग सुंदर महाप्रभु का दर्शन किया, नृत्य करते हुए महाप्रभु का दर्शन किए मध्य द्वीप में। तो इसी मध्य द्वीप में हंस वाहन है, कल हम सुना रहे थे शिव जी गौर कथा सुनने के लिए मध्य द्वीप में कथा होने वाली थी, मध्य द्वीप में ही है नैमिषारण्य। तो शिव जी उतरे और वह सुत गोस्वामी के मुखारविंद से उन्होंने गौर कथा का श्रवण किया। इसी मध्य द्वीप में पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ एक ही तीर्थ में आपको एक तीर्थ की यात्रा करो सारे तीर्थों की यात्रा आपकी हो जाती है। तो एक दीवदास नाम के एक ब्राह्मण थे, एक तो यात्रा कई स्थानों पर वे यात्रा करने जाते, तो भारत में कई तीर्थ यात्रा में गए और यात्रा करते करते नवद्वीप पहुंच गए। और नवद्वीप इतना भव्य दिव्य धाम, तो फिर वही रहने लगे मध्य द्वीप में, सारा जीवन उन्हें वही बिताया। अभी वृद्ध हो रहे थे, उनके मन में विचार आया कि मैं कई सारे तीर्थों में तो गया लेकिन वैसे एक तीर्थ का दर्शन नहीं हुआ और वो है पुष्कर तीर्थ। अब क्या होगा, दर्शन होगा कि नहीं, कैसे जा पाऊंगा, मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ वृद्ध, अब चलना भी मुश्किल, तो क्या होगा मेरा, क्या बिना दर्शन से कि मैं चल बसूंगा और नहीं रहूंगा। ऐसा जब ये वृद्ध देवदास सोच रहा था तो एक दिन स्वप्न में जो पुष्कर तीर्थ है वो मूर्तिमंत हुआ, मूर्तिमान तीर्थ बन गया, एक व्यक्ति बन गया, व्यक्ति होता है से। जब भागवत कथा हो रही थी हरिद्वार में और चार कुमार कथा सुना रहे थे तो उनके कथा में संसार के सारे तीर्थ आके अपने अपने आसन उन्होंने ग्रहण कर लिए, अपने अपने कुर्सी में, ये पंढरपुर तीर्थ, ये तीर्थ, ये कुरुक्षेत्र, ये तीर्थ, वो तीर्थ, और सारी नदी आके उन्होंने अपने स्थान ग्रहण कर लिए थे और सारे पुराण वहां आ गए, 17 पुराणों ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए, 18 पुराण तो अभी कहा जा रहा था भागवत पुराण, 17 पुराण तो बने थे, तो 17 पुराणों ने अपने, तो ये तीर्थ भी व्यक्ति, ये उनके पर्सनैलिटीज है, उनके फॉर्म्स है, वो व्यक्ति है। तो इनके देवदास के स्वप्न में पुष्कर तीर्थ आया, लो मेरा दर्शन करो। तुम पुष्कर जाना चाहते थे, मैं तो आ गया, मैं पुष्कर तीर्थ हूं, ऐसा कहे तो प्रसन्न तो हुए। उनको वह घर बैठे बैठे उनको कहीं आना जाना नहीं पड़ा और वो तीर्थ आ गया, वहां यह तीर्थ का दर्शन हुआ। फिर साथ ही साथ उसने कहा कि मैं आपके आभारी भी हूं, लेकिन आई एम सॉरी कि आपको वहां से यहां आना पड़ा। तो पुष्कर ने कहा, पुष्कर तीर्थ, नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं आया नहीं, कहीं से आया नहीं हूं, मैं यही रहता हूं। ओरिजिनल पुष्कर तो यही है, वो जो पुष्कर है राजस्थान में वो तो मेरा एक्सटेंशन है, वो तो एक्सपेंशन है। ओरिजिनल पुष्कर तो आई एम, मैं हूं, तुम दर्शन करो। और भी कई सारे तीर्थ, और कई सारे नहीं सभी तीर्थ नवद्वीप में हैं। जैसे श्री कृष्ण, ये तत्व है, जैसे श्री कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत है, कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशंस, उसी प्रकार ये नवद्वीप वृंदावन ये भी सारे तीर्थों के स्रोत ये नवद्वीप और वृंदावन है। अहम सर्वस्य प्रभवः, तो सारे तीर्थ का स्रोत, द मदर तीर्थ, ये बात के तो बच्चे है, उनके विस्तार है। इसी नवद्वीप में आगे जाते तो फिर कुरुक्षेत्र भी आता है, और आगे जाते फिर पंचवेणी स्थान आता, सारी पांच नदियों का वहां संगम है, वहीं पर गंगा पर जो ब्रिज बना हुआ है, पुल, कुछ 10-20 साल पहले तो उसका नाम गौरांग ब्रिज रखा है। तो हम लोग परिक्रमा में जब जाते हैं तो गंगा के तट पर जहाँ पंचवेणी है वहाँ हमारा नाश्ता प्रसाद, एवरी ईयर हम लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं भक्त। तो फिर क्रॉस करके जब हम ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द गंगा जाते हैं, ये तो द्वीप अब जो कहे मध्य द्वीप और गोद्रुम द्वीप, ये तो पूर्वी तट पर है। फिर क्रॉस करके जाते हैं तो फिर कोलद्वीप आता, कोलद्वीप, कोला मतलब वैसे वराह, द बोर, भगवान का एक केशव धृत शूकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो वह एक वासुदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे सत्ययुग में, और वे वराह भगवान की आराधना किया करते हैं। हरि भाव, क्या करते थे? वराह भगवान की आराधना करते, गंगा का जल ले आते, अभिषेक करते, कुछ पुष्पों का चयन करते, माला माल्यार्पण करते, गंध लेपन होता, बड़ी भाव भरी उनकी की हुई आराधना वराह भगवान की सेवा में। लेकिन इनकी भगवान के विग्रह में और भगवान में अंतर नहीं है, भगवान के विग्रह ही भगवान है। तो भी ये चाहते थे ये वासुदेव ब्राह्मण की उनको वराह भगवान का दर्शन हो, मतलब हिलने डुलने चलने सूंघने वाले वराह का वो दर्शन करना चाहते थे। तो उन्होंने आराधना की करते रहे, तो भगवान प्रसन्न हुए, और एक दिन उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिया। तो हर रोज जब आराधना करते तो मंदिर में या घर में ही उन्होंने एक विग्रह की स्थापना और आराधना कर रहे थे, लेकिन उस दिन जब दर्शन हुआ तो एक पहाड़ जैसे वराह भगवान मानो सर्वत्र फैले हुए, उनको ऐसे यू टू लुक अप टू, नॉट लुकिंग डाउन अपॉन। नहीं तो छोटे विग्रह तो उनको नीचे देखते, अभी तो उनको ऊपर देखना पड़ा। तो भगवान इतने विशाल आकार को धारण किए मानो पहाड़ ही, ये कोई पर्वत ही है। तो जहां पर ये कोल द्वीप है और कोल मतलब वराह, जिस द्वीप में भगवान ने इस एक ब्राह्मण को वराह रूप का दर्शन किया और विशाल दर्शन, विराट दर्शन, तो ये कोल द्वीप वृंदावन के गोवर्धन से, गिरिराज गोवर्धन के गोवर्धन और गोवर्धन पर्वत या गोवर्धन क्षेत्र और ये कोल द्वीप अभिन्न है। तो ये जो कोल बने पर्वत जैसे बने भगवान, तो पर्वत वृंदावन का जो गोवर्धन पर्वत है वो भगवान भी है, भक्त भी है, गिरिराज भक्त भी है और गिरिराज भगवान भी है। जब गोवर्धन की पूजा हो रही थी, प्रथम पूजा, फर्स्ट टाइम जब गोवर्धन की पूजा हो रही थी, तो नंद बाबा और कई सारे ग्वाले गोपिया पूजा कर रही थी, कृष्ण भी वहां थे, पूजा करने वालों में से कृष्ण भी वहां थे और कई सारे उन्होंने पकवान वहां गिरिराज की सेवा में। तो सभी ने एक समय देखा कि भगवान पर्वत के ऊपर है और चतुर्भुज बनके वे कह रहे शैलोस्मी शैलोस्मी, मतलब क्या कह रहे थे, शीला मैं, ये जो पहाड़ है अस्मी मैं हूं, ये पहाड़ मैं हूं, ये पहाड़ मैं हूं, शैलोस्मी शैलोस्मी से गर्जना घोषणा करने लगे। तो वो पहाड़ से वृंदावन का गिरिराज पहाड़ ही भगवान है, तो यहां कोलद्वीप में वराह भगवान पहाड़ जैसे, तो दोनों की अभिन्नता बताई गई है। अभी कोलद्वीप में समुद्रगढ़ एक इलाका है, एक दिस इज आई थिंक सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नवद्वीप। तो वहां समुद्रसेन नाम के राजा रहते थे, 5000 वर्ष पूर्व की बात है। तो इस समुद्र गढ़ में पहुंच गए, भीम पहुंच गए। जब राजसूय यज्ञ होना था हस्तिनापुर में, तो युधिष्ठिर महाराज अपने चारों भाइयों को चार दिशा में भेजा, जाओ थोड़ा धन इकट्ठे करके लाओ, यज्ञ के लिए बहुत धनराशि चाहिए। तो भीम को भेजा था उस दिशा में, बंगाल की ओर गए। तो हर राजा को वो देते अपना टैक्स, देते कुछ धनराशि देते ताकि यज्ञ संपन्न हो। तो जब इस ये समुद्र सेन राजा के राजधानी में पहुंचे तो समुद्र सेन राजा ने सोचा कि उनको एक आइडिया आ गई। वे भगवान के भक्त थे और भगवान का दर्शन करना चाहते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं भीम को किसी परेशानी में डाल दूं, कोई ऐसी इमरजेंसी खड़ी कर दूं, तो फिर क्या होगा, फिर भगवान आएंगे। ऐसे जब अर्जुन के लिए समस्या, भीष्म पितामह, भीष्म और अर्जुन लड़ रहे थे, तो फिर कृष्ण को बीच में आना पड़ा। इतना ही नहीं, वे क्या किए, अपनी प्रतिज्ञा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये प्रतिज्ञा थी, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। पार्थ सारथी थे, पार्थ के रथ को चला रहे थे, लेकिन उस समय उस स्थिति में अर्जुन के रक्षा के लिए वे उतरे रथ से और एक पहिया लिया उन्होंने और वह चक्रपाणी कहलाए, चक्रपाणी, और भीष्म पितामह की ओर आगे बढ़ रहे थे अर्जुन की रक्षा के लिए। तो इस समुद्र सेन राजा ने सोचा कि मैं भी अगर भीम का जीना अगर मुश्किल कर सकता हूं तो फिर कृष्ण जरूर आएंगे और फिर मुझे दर्शन होगा। तो और राजाओं ने तो टैक्स का पेमेंट किया, तो ओके, वेरी गुड, थैंक यू, आगे बढ़े भीम। लेकिन ये राजा टैक्स नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ। तो दोनों की लड़ाई वहां हुई और भीम वैसे राधा गोविंद ये बखी, तो भीम वैसे गदा के साथ तो युद्ध करने में ही वॉज एक्सपर्ट, लेकिन ये राजा थोड़े धनुष बाण चलाने वाले राजा थे, तो ऐसे वैसे बाणों की वर्षा करते गए। भीम को लगा जाए अभी तो आई एम फिनिश्ड, मैं तो अभी ये मेरा जीना मुश्किल कर रहा है, तो प्लीज हेल्प हेल्प हेल्प। फिर कृष्ण आ गए, कृष्ण आ तो गए लेकिन भीम ने देखा नहीं। कृष्ण तो थे वहां पर, लेकिन इज अप टू कृष्ण, दर्शन देना है नहीं देना है इट इज अप टू हिम, चाबी तो उनके हाथ में है। वहां तो थे, तो चंद्र ये सुवर्ण सेन राजा तो दर्शन कर रहा है और भीम को कुछ पता नहीं चल रहा है, और केवल दर्शन ही नहीं कर रहा है, ये राजा क्या अभी तो भगवान के चरणों में गिर गया, वहां लौटने लगा। भीम ने सोचा अरे अभी तो जीत रहा था, मुझे मार रहा था, अभी तो अपनी हार को मान रहा है, मैं हार गया उसको पता नहीं चल रही क्यों ये सब हाव भाव क्या हो रहे हैं, अभी तो इतने जोश के साथ धनुष चला रहा था और अभी। तो पहले तो कृष्ण का दर्शन किया वो समुद्र सेन राजा। धीरे धीरे तो जहां ये समुद्र गढ़ है, ये है वृंदावन का आई थिंक कुमुद बन, वृंदावन की कुमुद बन के साथ ये समुद्र गढ़ जो कोलद्वीप का ये क्षेत्र है उसकी तुलना है। तो कुमुद बन में जैसे राधा कृष्ण की लीलाएं होती है, तो वैसा ही दृश्य दर्शन ये समुद्र सेन को वहां समुद्र गढ़ में। तो पहले तो अकेले कृष्ण थे और थोड़ी क्षणों में राधा कृष्ण हुए, राधा कृष्ण का दर्शन, और फिर और कुछ क्षणों के बाद राधा कृष्ण एक हो गए और गौरांग महाप्रभु का दर्शन। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। इस प्रकार जब ये राजा संतुष्ट हुए तो वह उन्होंने फिर सारा टैक्स वगैरह दे दिया और भीम भी तुम भी खुश, हमारे भी हम भी खुश। तो भीम को भी अपना टैक्स मिला, इनको भी दर्शन हुआ भगवान का। भीम आगे बढ़े, थैंक यू नेक्स्ट डोर। तो ये कोलद्वीप और ऋतुद्वीप के सीमा पर गौर गदाधर का दर्शन है। गौर गदाधर ऐसे अधिकतर दर्शन या अधिकतर मंदिर गौर निताय के मिलेंगे, गौर निताय गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। लेकिन कुछ मंदिरों में आपको गौर गदाधर का दर्शन भी होगा। तो यहाँ पर ये कोलद्वीप और ऋतुद्वीप के तट पर जो मंदिर है, यह गौर गदाधर का दर्शन है। तो गौर तो कौन है आप जानते हो, गौरांग महाप्रभु तो कृष्ण है। और ये जो गदाधर है, और यह वैसे गौरांग महाप्रभु कृष्ण और राधा है, राधा कृष्ण। वैसे राधा दो रूपों में प्रकट होती है चैतन्य महाप्रभु के लीला में। एक तो राधा और कृष्ण मिलके जो गौरांग महाप्रभु का रूप बना, वह भी राधा है। और एक राधा गदाधर के रूप में प्रकट होती है, थोड़ा आंशिक रूप में, फुल फ्लेज्ड। तो वो राधा कृष्ण न है अन्य, चैतन्य महाप्रभु राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। लेकिन एक आंशिक रूप में राधा का जो रूप है वो गदाधर है, गदाधर पंडित। कृष्ण लीला में वैसे राधा कृष्ण के साथ सब समय रहना चाहती है, जब चाहे मिलना चाहती तो, लेकिन संभव नहीं है, समाज के कई सारे बंधन है। तो इस चैतन्य लीला में राधा को बनाया है, या राधा बनी है गदाधर पंडित। तो उस लीला में तो फिर उनका मिलना जुलना खूब हुआ करता था। ये गदाधर पंडित सब समय चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहा करते थे। और सच्ची माता ने कहा था गदाधर को, साथ में रहो, साथ में रहो। किसी ने कहा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को खोज रहे, कहाँ मिलेंगे कृष्ण, कहाँ होंगे कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। हे राधे ब्रज देवी के ललिते, हे नंद सुनो कुतः, कहाँ हो कहाँ हो। तो इस प्रकार खोजने वाले, कृष्ण को खोजने वाले ये निमाय या गौरांग, उनको किसी ने कहा कि ऐ जिसको तुम खोज रहे हो कृष्ण को, वो दूर थोड़े ही है, वे तो तुम्हारे हृदय प्रांगण में विराजमान है। ऐसा सुनते ही चैतन्य महाप्रभु उसको थोड़ा अपने नाखून से खुदाई करने लगे। अगर वो मेरे साथ है, मेरे पास है, तो मैं देखता हूँ कहाँ। तो ये तो ठीक नहीं था ऐसा करना। तो सची माता को पता चला तो ए नहीं 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 गदाधर तुम समझाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों निमाय इस प्रकार अपने शरीर को क्षति पहुंचा रहा है, तुम साथ में रहा करो, तुम समझाया करो। तो वैसे बचपन के वो लंगोटी यार जैसे वो दोनों साथ में ही रहा करते थे, गौर गदाधर। तो इस मंदिर में गौर गदाधर के विग्रह का दर्शन है, और प्राचीन मतलब 500 वर्ष पुराने विग्रह थोड़े कम ही मिलते हैं नवदीप मायापुर में, उसमें से कुछ ही है विग्रह, उसमें से ये एक है विग्रह गौर गदाधर। तो एक समय चैतन्य महाप्रभु और गदाधर वहां आए, तो वो स्थान वैसे द्विज वाणीनाथ नाम के भक्त का स्थान था। तो चैतन्य महाप्रभु और गदाधर वैसे द्विज वाणीनाथ के भाई है, गदाधर और द्विज वाणीनाथ ये भाई भाई है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां आए तो द्विज वाणीनाथ, वाणीनाथ ब्राह्मण थे, भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, तो गृहस्थ थे, उन्होंने खूब सेवा की चैतन्य महाप्रभु की, अपने भ्राता गदाधर की भी। और फिर वो जाने के लिए तैयार हो गए, गौर गदाधर जा रहे थे, आगे बढ़ना था उनको, लेकिन उनके सानिध्य से इतने आकृष्ट हुए थे, इतने आसक्त थे, वे चाहते थे कि गौर गदाधर चैतन्य महाप्रभु और गदाधर वही रहे। तो जब वे जाने लगे और तो उन्होंने निवेदन, नहीं आप रहिए, प्लीज यू स्टे, प्लीज स्टे, आप रहिए, आप रहिए। तो हुआ क्या, तो वे विग्रह बन गए, और तुम चाहते हो कि हम रहे यहां, ओके, तो वो विग्रह बन गए, विग्रह भी बन गए और फिर जाने भी लगे। एक रूप में वो विग्रह बने और दूसरे रूप में वो जाने लगे। तो अभी जो जा रहे थे उनको वे रोकने लगे, नहीं 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 विजयवान ने, प्लीज स्टे, प्लीज स्टे, ओके विल स्टे। तो जो जा रहे थे वे बन गए, विग्रह बन गए, और जो पहले विग्रह बन चुके थे वे चलने लगे। तो जो चल रहे थे उनके ओर पुनः वे दौड़ के, ए नो यू प्लीज स्टे, यू प्लीज, ओके वी स्टे हियर। फिर जो पहले दूसरे विग्रह थे वे चलने लगे, तो उनको पता नहीं चल रहा था कि इसमें से विग्रह कौन से है और इसमें से चलने फिरने वाले कौन है, चैतन्य महाप्रभु गदाधर। और वैसे इस लीला के साथ ये भी सिद्ध किया है भगवान ने, भगवान के विग्रह में और भगवान में भेद नहीं है। फिर वहां से जब हम आगे बढ़ते परिक्रमा में तो ऋतु द्वीप आता है, ऋतु द्वीप, ऋतु आप समझते हो, ऋतु मतलब सीजन। तो साल में 6 सीजन होते हैं, हर 2 महीने के उपरांत नया सीजन आता है, नया ऋतु आता है, और स्थानों पर नया ऋतु हर 2 महीने के बाद आता है, लेकिन इस ऋतु द्वीप में सारे 6 ऋतु एक ही साथ रहते हैं, वहां साइमल्टेनियसली ऑल द सीजन्स वहां रहते हैं। और ये क्षेत्र बड़ा ही रमणीय है नवद्वीप का, ये ऋतु द्वीप नामक, बड़ा हरा भरा रंग बिरंगा, और इसी यहीं पर राधा कुंड है, वैसे नवद्वीप का राधा कुंड, श्याम कुंड। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले जैसे नदियां भी, उनका अपना व्यक्तित्व है, ये तीर्थ स्थान उनका भी व्यक्तित्व है, तो ऋतुओं का भी अपना व्यक्तित्व है। तो ये छह ऋतुओं का एक समय कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उस कॉन्फ्रेंस का चर्चा का विषय ये था कि अब महाप्रभु के प्राकट्य का अब समय कुछ दूर नहीं है, तो भगवान जब प्रकट होंगे तो किस सीजन में प्रकट होंगे, इन विच सीजन, किस सीजन में प्रकट होंगे, इस पर थोड़ा चर्चा, थोड़ा विवाद हो रहा था। तो वैसे स्प्रिंग सीजन ने, वसंत ऋतु ने, ए शट अप, समझते नहीं हो क्या, कृष्ण क्या कहे, कुसुमाकरः ऋतु नाम कुसुमाकरः, भगवान गीता में कहे सारे ऋतुओं में मैं कुसुम आकरः, जिस ऋतु में फूल ही फूल खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं, तो वो वसंत ऋतु। तो भगवान और कौन से ऋतु में प्रकट होंगे, हाँ किस ऋतु में प्रकट होने चाहिए, वसंत ऋतु में प्रकट होंगे। सभी ने मान भी लिया और फिर वैसे ही हुआ, जब प्राकट्य का समय आया तो भगवान किस ऋतु में प्रकट हुए, वसंत ऋतु में भगवान प्रकट हुए। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो या विद्या वाचस्पति का, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई थे, विद्यानगर, वहाँ एक विद्यानगर नामक एक विशेष स्थली है, संसार की सारी विद्या का वहाँ निवास। तो वहीं पर सार्वभौम भट्टाचार्य प्रकट हुए थे, जन्मे थे, बड़े विद्वान थे, न्याय इत्यादि के ज्ञाता थे, लेकिन वे जैसे चैतन्य महाप्रभु, आई डोंट नो किस समय, लेकिन वो नवद्वीप छोड़ के फिर वो गए थे जगन्नाथपुरी, वह अपना जो उनका प्रचार या अद्वैतवाद का प्रचार, निराकार निर्गुणवाद का प्रचार वो नवद्वीप पे नहीं करना चाहते थे, तो जगन्नाथपुरी के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। तो उनके भाई विद्या वाचस्पति वहाँ रहते थे नवद्वीप में ही। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया काटवा में गंगा के तट पर, और फिर हाहाकार मच गया सारे नवद्वीप में, चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लीला का जब पता हुआ तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और विरह, और सभी खोज रहे थे कहाँ मिलेंगे, कहाँ होंगे इस वक्त, कहाँ है, कहाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु काटवा से यहाँ विद्या वाचस्पति के घर में आके रुके थे। तो इस बात का जब पता चला नवद्वीप में, तो सारे नवद्वीप के वासी अपने सारे काम धंधे जो भी वही छोड़ छाड़ के दौड़ पड़े, सभी का लक्ष्य और विद्या वाचस्पति का निवास विद्यानगर में, या पास विद्यानगर के पास। तो कुछ तो आधे नवद्वीप वासी तो गंगा के दूसरे तट पर थे, तो उनको नदी क्रॉस करनी थी ताकि वे विद्या वाचस्पति के घर पर जा सकते थे। तो हजारों और लाखों की संख्या में लोग जाना चाहते थे विद्या वाचस्पति के घर पर। तो नदी के तट पर तो आ गए, तो लाखों लोग जाना चाहते और रुकने का कोई तो वहाँ कुछ थोड़ी बोट्स थी, तो कोई क्यू में तो खड़ा नहीं किया, इनको छोड़ के आ जाओ फिर हम नेक्स्ट बोट में या फिर थर्ड बोट में या टेंथ बोट में आए ना ना, वो सभी साथ में जाना चाहते थे। तो बोट की वगैरह उन्हें प्रतीक्षा नहीं की, सारे कूद पड़े। अब जिएंगे तो उनके लिए, मरेंगे तो उनके लिए, तो हुआ तो सब तैर के नदी को पार कर रहे थे। तो सारे लाखों लोगों के केवल सिर हिलते हुए वहां दिखाई पड़ रहे थे, मानो कुछ तरंगे, नदी का कलर ही बदल गया, नदी का जल तो दिखाई नहीं दे रहा था, इतने सारे असंख्य लोग साथ में पार कर रहे थे। और जब पार किए तो फिर वो सारा जंगल का रास्ता या कोई पगडंडी रास्ता था सर, तो लोग पेड़ पौधों को लांघते हुए, छलांग मारते हुए, जहां तहां उनको उखाड़ते हुए, फेंकते हुए बस जा रहे थे। दूसरा कोई विचार नहीं था, बस महाप्रभु का दर्शन करना है, बस निमाय को देखना है, मिलना है। तो महाप्रभु, तो लोगों ने सारा घेराव कर दिया उन सभी दिशाओं में, सारे लोग ही लोग, कुछ छत पर चढ़ गए, कुछ ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो महाप्रभु ने देखा कि अब ऐसे वह निर्जन वन में या ऐसे कुछ एकांत में रहने के लिए आए थे, लेकिन सारा जन समुदाय, जन सागर ने घेर लिया। तो अहम भक्तों पराधीनः, फिर भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, पराधीन। तो भगवान बाहर आए और उन्होंने सभी को दर्शन दिया। रीवो, रीवो। तो स्थान भी इस रुद्र द्वीप में है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो और एक द्वीप आता है, जाह्नो द्वीप या जाह्नो मुनि अपनी वंदना, त्रिसंध्या वंदना में लगे रहते हैं। तो हुआ ये संध्या वंदना जब करने की तैयारी में थे, सारा आचमन पात्र सब, शंख पुष्प ऐसा, यहाँ भी कुछ तैयारी है। तो हुआ उस एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि कहीं से इतना सारा ओघ, जलोघ, पानी, जल बहकते हुए आया और सारा बहके गया उनका, फूल कहा तो सारा बहके जा रहा था। तो उनको पता चला ये तो कोई नदी है क्या, और सचमुच नदी थी, गंगा नदी थी। फर्स्ट टाइम एवर, कल भी बताया आपको, गंगा प्रकट हुई, भगीरथ राजा लाए पृथ्वी पर। तो हुआ उसको धीरे धीरे पता भी चला, फिर या तो गौर पूर्णिमा उत्सव होने वाला है तो मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगी। तो उसी समय जब आ रही थी तो वह भगीरथ राजा तो रथ स्वयं चला रहे थे, शंख ध्वनि करते हुए आगे बढ़ते हुए, और पहिए से वो नदी का पात्र भी, रिवर बेड भी बन रहा था, पीछे से नदी भी आ रही थी। तो वो नदी जाह्नो मुनि के आश्रम कैसे उखाड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, तो जानू मुनि को जब पता चला आ ये कोई नदी लगती है, तो उनको बड़ा आया क्रोध, ये कौन होती है मेरे संध्या वंदना में विघ्न डालने वाली, मैं दिखाता हूं उसका सबक सिखाता हूं। क्या किए, उस नदी को पी लिए, एक पानी का बूंद भी बाहर नहीं है। तो भगीरथ ने कितने सारे पहले प्रयास तो किए थे, प्रयासों के लिए प्रसिद्ध अगर कोई है इस संसार में तो वे कौन थे, भगीरथ। उनके जैसे प्रयास न भूतो न भविष्यति, ऐसे प्रयास गंगा को लाने के लिए। और अब तो कुछ ज्यादा दूर भी जाना नहीं था, बस गंगा सागर पास में ही था, लेकिन दोबारा गंगा ही नहीं रही। तो रथ को यू टर्न करके देखे तो गंगा ही नहीं है, और फिर समझ गए कि शायद ये मुनि की करतूत होगी। तो जान मुनि के पास गए तो क्षमा मांगी, हमको पता नहीं था आप वंदना कर रहे थे। तो जान मुनि प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने गंगा को पुनः प्रकट कर दिया। तो जाह्नवी मुनि के जांग से कहते हैं पुनः जाह्नवी गंगा प्रकट हुई, और तब से उस गंगा का नाम जाह्नवी हुआ। एक नाम तो उसको गंगा को नाम भगीरथ भागीरथी भागीरथी भगीरथ के प्रयासों से उसको भागीरथी नाम मिला। अब जाह्नवी मुनि ने पुनः जन्म दिया, जाह्नवी मुनि की पुत्री मानी जाती है, इसलिए जाह्नवी हो गई। तो वह तो जाह्नवी मुनि का आश्रम भी वहा जाह्नवी द्वीप में। तो जाह्नवी मुनि के नाम से एक द्वीप है, नव द्वीपों में एक द्वीप जाह्नवी द्वीप है, वहां पर ये लीला हुई। मेरा और भी दो तीन द्वीप बचे हैं, हम लोग ने मध्य द्वीप से गोद्रुन द्वीप से हमने कुछ उस द्वीप की कुछ घटनाएं कुछ लीलाएं इतिहास का वर्णन हम, और ये सारा का सारा वर्णन अधिकतर जो यह हम सुना रहे हैं ये नित्यानंद प्रभु सुनाए थे जीव गोस्वामी को। नित्यानंद प्रभु स्वयं ही गाइड बन गए जीव गोस्वामी को, उन्होंने सारा नवद्वीप की यात्रा कराई। तो इस द्वीप में ये लीला, इस द्वीप में ये घटना हुई, इस द्वीप में ये इतिहास, यह ये हुआ, यह ये समुद्रगढ़ है, यह समुद्र सेन रहते थे, यह ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ, ये सब वर्णन नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद बलराम होइल निताय, जो बलराम बने थे नित्यानंद, जो तीर्थ यात्रा भी किए नित्यानंद रूप में, तो उन्होंने नवद्वीप की भी यात्रा की और जीव गोस्वामी को सुनाए सारी कथाएं लीलाएं नवद्वीप धाम की। तो कुछ लीलाएं कथाएं इतिहास तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले का है। फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और फिर उनकी डे वन से लेकर फिर बाल लीलाए वहां नवद्वीप में, फिर युवक बने, उनके विवाह भी हुए, चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ बने, संन्यास निमाय संन्यास लीला जब 24 वर्ष के थे, फिर चैतन्य महाप्रभु ने 6 सालों तक भ्रमण किया है, वो मध्य लीला कहलाती है, प्रचार प्रसार किए, राधार भावे ये वे गोरावतार हरि कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। तो राधा भाव में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और हरे कृष्ण नाम का उन्होंने प्रचार किया। तो 6 सालों तक वो प्रचार कर रहे थे, वो मध्य लीला, और फिर अंतिम 18 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे और जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं संपन्न हुई उन लीलाओं को अंतिम लीलाएं कहा। तो नवद्वीप में हुई लीलाएं वो आदि लीलाएं कहलाती है, फिर मध्य लीला 6 साल, फिर 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में अंतिम लीला। तो इस प्रकार 48 साल 48 ईयर्स भगवान ने अपनी प्राकट्य लीला का दर्शन कराए। तो यह तम धाम से संबंधित या भगवान के प्राकट्य के पहले का भी कुछ इतिहास सुनाए। हमारे पास अब कितना समय, समय तो अभी आज तो समय नहीं है, तो कल भी है और परसों तो और पूर्णिमा महोत्सव है, तो परसों भी है, कुछ अभिषेक भी होगा, कुछ नृत्य नाटिकाएं भी होगी परसों, तो उत्सव है, लेकिन कथा भी होगी गौर कथा आज, आई मीन कल और परसों भी होगी। तो गौरांगा गौरांगा गौर हरि गौर हरि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, नवद्वीप धाम की जय, गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, गौर कथा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।